श्रीमद् भगवद गीता यथारु अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 13। गेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिम् मत्परम् ब्रह्मन् नासत्तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। यहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में या हमारे बारे में बताएंगे। अगर आपको याद हो तो गेय वस्तु है भगवान और आत्मा दोनों और उनके बीच का संबंध, तो और साथ साथ कार्य क्षेत्र में भगवान के बारे में बताएंगे। तो गेय वस्तु जो है वो आत्मा है और वो उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि आत्मा के गुणों को दूसरी लाइन में बताया गया है। एक बात ये है कि आत्मा अनादि है, अर्थात इसकी कोई शुरुआत नहीं है, और अधीन है, अर्थात भगवान पर निर्भर है, भगवान की दास है। तो आत्मा भगवान की दास तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक विशिष्ट समय में, एक किसी समय में आत्मा का प्राकट्य भगवान से हुआ हो। वो भगवान की तरह ही वो भी शाश्वत है, हम सब लोग शाश्वत हैं। इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं अनादि तो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। स्वराट केवल भगवान है, हम लोग सब लोग अनादि हैं और हम सब भगवान पर आश्रित हैं। ये बात, ये दो गुण स्पेशली बताए गए हैं। तीसरा गुण है भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। थोड़ा सा समझ देना चाहिए, कार्य का अर्थ है सत और कारण का अर्थ है असत। तो उसका अर्थ समझाते हैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण। मतलब इस जगत में जो प्रकृति है, जब वो नाम और रूप धारण करती है तो उसको सत बोलते हैं, और जब वो अप्रकट अवस्था में रहती है, जब नाम और रूप नहीं होता है, तो उसको असत कहा जाता है। तो जो असत है यानी कि कारण है, वो कार्य जो प्रकट प्रभाव देख रहे हैं जगत में, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे एक डिब्बा, तो डिब्बा वस्तुतः पांच तत्वों का बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो पृथ्वी भी एक नाम है, उसका रूप है। अब इसके और परे जाएंगे तो महत्त्व, और उसके और परे जाएंगे तो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, इसे असत कहा जाएगा। लेकिन इसके भी परे है जीवात्मा, यानी कि जीवात्मा प्रकृति की असत अवस्था, अप्रकट अवस्था से प्रकट नहीं हुई है, शाश्वत है, और वो भगवान का अंश है। तो ये बात हम समझते हैं। तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। क्षेत्र मतलब हमारा शरीर और उसकी पूरा का मन बुद्धि अहंकार सब कुछ, और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा और परमात्मा जो इस शरीर को जानने वाले हैं। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। ये भी हमने पिछली बार, अभी पिछले श्लोकों में देखा 8 से 12 में, कि आत्मा को जानने की विधि है, क्या विधि है। अब वे गेय के विषय में बता रहे हैं, यानी कि क्या जानने योग्य है, पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में। तो आत्मा के गुणों के बारे में भगवान यहां बता रहे हैं, अगले श्लोक में परमात्मा के बारे में बताएंगे। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमृत का आस्वादन करने का मुख्य आधार है भगवान की भक्ति। और अगर व्यक्ति आत्मा को परमात्मा समझने लग जाए, या परमात्मा को आत्मा समझने लग जाए, या फिर आत्मा को भौतिक जगत का कुछ प्रोडक्ट समझने लग जाए, तो ये सारी चीज़ें विष के समान हो जाएंगी, ये अज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा को शरीर से अलग समझना और अनादि समझना, उसके गुणों को समझने के द्वारा ही व्यक्ति अमृत का आस्वादन कर सकता है और भगवान की भक्ति में स्थिर रह करके भक्ति में पूर्ण हो सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। तो ये हमने पहले भी समझाया था कि जीव अनादि है, अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि जीव की उत्पत्ति भगवान से कब हुई, ये ट्रैक आप नहीं कर सकते हो। और हमारे दुखों का कारण यही है कि हम अपने पहचान इस शरीर से करते हैं, जिसका प्रकटीकरण होता है और अंत होता है, और इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि वो प्रकट हो रहा है और उसका अंत हो रहा है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है, न जायते मृते वा विपश्यत। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। तो शरीर का ज्ञाता है आत्मा, यहाँ इस कंटेक्स्ट में आत्मा, और आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न आत्मा कभी मरती है, केवल विभिन्न शरीरों को वो धारण करती रहती है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्राधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। ये तो स्पष्ट है कि इसकी चर्चा हमने काफ़ी डिटेल में पिछले श्लोकों में करी है कि भगवान भी ज्ञाता हैं और भगवान प्रमुख ज्ञाता हैं, क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते और दूसरों के शरीर के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन भगवान हमारे शरीर के बारे में भी जानते हैं और अन्य के शरीरों के बारे में भी जानते हैं। स्मृति वचन है, दास भूतो हरे रेवा नान्य सेव कदाचना। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। कुछ चीजें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। एक चीज, ये जो श्लोक है, दास भूतो हरे रेवा नान सेव कदाचना, अर्थात जीवात्मा भगवान का ही दास है। हरे रेवा हरि का ही दास है, न अन्य सेवा, और किसी का नहीं कभी भी। कदाचना मतलब कभी भी, तो कभी भी ही जीवात्मा का संबंध जो है वो भगवान से ही है, वो भगवान का ही अंश है, और भगवान मतलब हरि, हरि का ही अंश है और किसी का नहीं है। और ये बात जब व्यक्ति जीव समझ लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा में लगता है, तो भक्ति के सुख को प्राप्त कर पाता है। और दूसरा चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि आनंद ब्रह्म, इस पर अभी तक मैं कुछ वक्तव्य या कुछ लेख नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन हम जो प्रभुपाद के तात्पर्य से समझ रहे हैं वो यही है कि आनंद ब्रह्म भगवान है और विज्ञान ब्रह्म जो है वो जीवात्मा है। तो ये अंतर देखना चाहिए।